को समझो, लाइन ऑफ एक्शन दो। और ये गुरु की ड्यूटी है कि जिस शब्द को वो डील करता है उसकी प्रकृति को पहले स्टडी करेगी, उसकी पैदाश किस खानदान में हुई है, उसके जज्बात क्या है, तो वो उसकी प्रकृति को देखकर उसको तालीम दे और उसको बढ़ाए। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? नाम दान देना तो आसान काम नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं। मेरे छोटे भाई राय साहब सुंदरनाथ सिंह, ये खेलूमा इसका नाम का दाता ने बदल दिया। ये भी मेरी तरह नाम लेना चाहता था। दाता ने कहा भाई नाम दे दिया, कहा जपना नहीं, तुमने नाम जपना नहीं, क्या करना तेरे वास्ते लाइफ मीन वर्क एंड वर्क मीन लाइफ। समझिए मेरी बात को, मैं आपको बता रहा हूं, समझता मेरा भाई। दूसरे की नेचर को स्टडी करो, उसकी नेचर के मुताबिक उसको हैदायत करो। बाधे वक्त ऐसे मेरे पास केस आते हैं खानदानी, उनके भाइयों के साथ झगड़े होते हैं, नहीं समझ में आती है, लेने देने के व्यापार में होते हैं। अगर सबको ही यही कहोगे भगत बन जाओ, भगत बन जाओ, दुनिया उनको खा जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं देव साहब? दुनिया को परमार सिखाओ चीज है, स्वयं सिखाओ चीज है। दुनिया में रहने के लिए हमें जहां बहुत कुछ करना पड़ता है, इस वास्ते ये गुरु का काम है कि इंडिविजुअल अदा करे। इंडिविजुअल जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट है और हॉस्पिटल है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो वो बात कहता है कि बीमारियां आए ना, और हॉस्पिटल जो है तो बीमारी हो तो इंजेक्शन लगाता काटता है। इसलिए ये गुरु मत किसी बार में रात से अपनी तकलीफात ध्यान करो, अपने आप को उसके सपोर्ट करो। अगर वो कैपेबल है किसी को डील करने के, तब उनको केस हाथ में लेना चाहिए। जिसका डॉक्टर है ना, अगर उसने उसको डायग्नोज कर लिया, वो समझता मैं क्योर कर सकता हूँ, तब उसको उसका इलाज शुरू करना चाहिए। अगर वो कैपेबल नहीं तो क्या करेगा? ऐसे ही गुरु जो है वो हालात सुन के अगर वो समझता है कि ही कैन चेंज हिज लाइफ, तब वो उसको नाम देंगे, उसका उसका बाजू पकड़े। हमेशा पूर्वमैद रहो, किसी को रिश्तेदार को अपने बच्चों को कभी मत कहो कि तू नाराज। देखो मैं आपको बताता हूं, तुम्हारे बच्चे हैं इनको मत कहो तू नाराज है, तू खराब है। वो जो तुम्हारा ख्याल दिया हुआ वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा। जरूर गुजार बता सकते थे हमारे घरों में खाद औरतों को बुरा पड़ा करते रहते हैं, औरतें खादों को बुरा पड़ा करते, उनका नतीजा हमारे घर की अशांति आ जाती। इस वास्ते मैंने तालीम को बदल दिया, शांत यानी घर में प्रेम रखो। जिस घर में हावन बीवी प्रेम से रहते हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं मानता, कई औरतें होती हैं, मैं तुमको अमली जिंदगी बताता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारी ये कुर्सी रहती है। जिन्हों ने कोई बात कही, किसी ने कुछ कही, वो खोपड़ी में रखती है और उसके ऊपर सोचती रहती है, उनको गंद हो। नहीं आप जो राय साहब ने कुछ बात भूलती नहीं कहती, कुछ नहीं मगर दिल में जरूर रखती। तो मैं जानता था कि इस किस्म की बातों से सेहत पर असर पड़ता है, बस हो गया यही बैठ जाओ। तो मैं यही कहा करता था, मैं कहा करता भागवती तुम्हें कभी छह साल चार पाए पड़े, तुमको बता देता हूं मैं, ये सत्संग है, लक्केबाजी नहीं। तो घरों में बेटियों शांति रखा करो, अगर तुम्हारे घर में कला है उसका नतीजा प्रेम से रहो, बच्चों को बच्चों को हर वक्त झटकारा मत करो, मारा मत करो, पर उनका क्या करूं, जिस भाव से तुमने पैदा किए हुए वही तो बच्चे होंगे। मैं जब भी बात कहता हूं तो तुम बुरा हो गया, अजीब बात है। राम राम जपने से, मंदिर में कीर्तन करने से, सिर मारने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण अपने मन पर काबू करने से होगा। हम लोग अपने अंतर बैठ के सोचते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, कांग्रेस प्लान बनाती है, फलानी पार्टी को इस तरह से नुकसान हो जाए, दूसरी पार्टी प्लान बनाती है, इंदिरा गांधी को ऐसे नुकसान पहुंचाया जाए, हमारे घरों में एक सोचता है दूसरे को ऐसा सिखाया जाए। ये सब जितने ख्याल की दुनिया है, ये मानसिक जगत है। ऐसे ख्याल रखने वाला अगर ये सोचे कि मेरा मुझे शांति मिलेगी, ये बिल्कुल झूठ है। न मुल्क की कोई अगर कुछ बन सकता है, दुनिया को अगर कोई अच्छा बना सकता है तो ऐ माताओं तुम हो। बस एक बात तुमको बता दे, जिस ख्याल से जिस नियत से हम लोग आजाद पैदा करते हैं वो ही कुछ हमको मिलता है। इस वक्त इस तालीम की जरूरत है, बच्चे अच्छे पैदा करो, उनको अच्छे संस्कार दो। चलो जो मेरी बात करो, मैं तुम व्यक्तियों को कुछ कहना चाहता हूँ। राम राम जो अगर मैं मुक्ति पद का जिक्र करूंगा, चौथे पद का जिक्र करूंगा, तुम क्या समझोगे? अगर आपको चौथे पद का जिक्र करूं तो आप क्या समझोगे? तुम तो व्यक्ति हो, तुमको मैं कुछ बता देता हूँ। घरों में शांति रखो, बच्चों को कभी बुरा भला मत कहो, उनको एनकरेज करते रहो। ये तालीम दाता जाएगी या कि नहीं, वो कभी किसी को बुरा नहीं कहते। तुम किसी को बुरा बुरा कहते हो, जुबान से कहने का इतना असर नहीं। जब तुम अपने अंतर में बैठ कर सो, इसलिए जब तुम सागर में जाते हो उस वक्त अच्छे ख्याल लेके अभ्यास किया करो। कोई भी किसी आदमी को मत कहो तुम बुरे हो, तुम खराब हो, तुम बदमाश हो, और उनको अच्छे ख्याल दो। यही दाता जाग की ताई में इनको पूछ लो, यही है कभी किसी को काम नहीं। तो राजी क्या है, मैं आज आया आपको सत्संग सिर्फ अयोध्य से पढ़ा रहा हूं। दृष्टि देखने में किस कैसे तुमने जिंदगी गुजारनी है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। अपने संकल्प पर काबू रखो, ख्याल दी एक। दूसरी बात सुन लो, मेरे पास नौजवान तबके के आदमी आते हैं, बहुत आदमी अशांत होते हैं। अशांति का मूल कारण तीन है, जिस्मानी कमजोरी का नाम निबड़ता। अब तुम सोचो ये निबड़ता आती क्यों है? कुछ तो हमारे माँ बाप से हम संस्कार लेते हैं। बाप को आशिक है, सुझाव है, विज्ञान है, वो अगर आवाज पैदा करेगा इज ए क्रिमिनल। तुम्हारा खुद डालो, मैं क्या कह रहा हूं, बच्चे इनहेरिटेंस में बीमारियां लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? कुछ तो निबड़ता उनका कारण, और कुछ बच्चे पेट में होते हैं। स्त्री पुरुष फिर भी काम आते होते रहते हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा वो गर्भ में रहता हुआ काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के संस्कार जैसी माँ के पेट में माँ को आएंगे नहीं आएंगे, इन्हें हेल्थ में लेगा भी लेगा, तो वो बच्चा किलोयज व्यक्ति गुमराह हो जाएगा, पैशनेट हो जाएगा, खराब काम करने लग जाएगा। और कुछ हमारी सोसाइटी गंदी हो जाती है, क्योंकि उसका क्या है कि आदमी अपनी ताकत को जहां तक हो सके कायम रखे। तुम नौजवान बच्चे हो, तुमको मैं कहना चाहता हूं, मेरा यही नाम दान है तुम्हारा। मैं ये नहीं कहता तुम्हारा असम लोगो दबा करो, तुमको कहता हूं अपने कैरेक्टर का ख्याल रखो, समझते हो ना। तुमको या तो ऐसे आदमी को या तो गुरु महात्मा लूटेंगे और या डॉक्टर लूटेंगे। मानसिक और शेख ब्रह्म से दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे साथ से यही तो कहते हैं, कोई और तो नहीं कहते हैं। एक आदमी 20-25 साल शादी नहीं कराता, वो गिरता रहता है, क्या फायदा। ये अभ्यास में जिनको प्रकाश वगैरह नहीं खुलते हैं, चलते रहते हैं, ये कौन है? ये वो आदमी है जिनके मानसिक अशेष दल से गिरे हुए होते हैं। अभ्यासियों, नौजवानों, मैं तुम्हारे तुमको सच्चाई बयान कर रहा हूं। एक शख्स बनारस से मेरे पास आया, हुशियार पर कहता मुझे ईश्वर के दर्शन करा दो। ईश्वर क्या? मैंने कहा ईश्वर क्या है? उसने ईश्वर ही, ईश्वर दुनिया बनाता है, तुम्हारे अंतर तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा बीज है जिसमें ये ताकत है जो बच्चे पैदा कर देता है। दूसरा ईश्वर तुम्हारा संकल्प है, वासना है, जैसी तुम वासना करोगे वैसी तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। प्रकाश है, रोशनी है, ज्योति स्वरूप है, तुम इसे बाहर कहां ढूंढते हो? तुम बेशक राम राम ना जपो, अगर अपने मन पर काबू रखो, तुम ईश्वर के पुजारी हो। जो अपने बीज को बेफायदा अदा करता है वो ईश्वर जो ही है। तुम ईश्वर को पर नाम जपो या ना जपो, इसलिए है नौजवान बच्चों तुमने जो बैठे हुए हो, अपने करैक्टर को बनाओ। नौजवान लड़कियां हैं, अपने करैक्टर को बनाओ, समझो मेरी बात को। और उतना खाओ जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। हम स्वाद के जेरे असर ऊट पतंग खा जाते हैं। खाओ जिंदा रहने के लिए, स्वाद के लिए ना खाओ। यह है निर्बलता का एक मूल कारण। सेहत का ख्याल रखो, सबसे पहले खुश रहने की कोशिश करो। ख्याल की ताकत हमारी जो सुबह, मैं 88 साल का हूं ना, बच्चों बोलता हूं तो मालूम करता मैं बूढ़ा हूं, नहीं करता। अपनी जबान को काबू में रखो, खुराक अपनी ठीक रखो, ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे, फिर दिखा रखो। तो निर्बलता का क्या कारण मैंने आपको बता दिया। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने मानसिक शरीर ग्रंथ चल को ठीक रखो, तुम्हारी निर्बलता दूर हो जाएगी। अगर तुम ये उम्मीद करो कि मैंने फूंक मार के तुम्हारी निर्बलता दूर कर दी, मैं तो कर नहीं सकता, शायद नंदू भाई का गुराव गुरु का चलता हो तो मुझे पता है। अब ऐसा तुम्हारा मन कमजोर है, जैमी है, धर्मी है। ए जैमी भी आदमी पता कौन होती है? तुम वैदिक को पढ़ो, जिनके ब्रह्मचर्य ज्यादा गिरे हुए होते हैं वो वैमी होते हैं, ज्यादा सवाल वो उठाते हैं। रामचंद्र आके खोल, मैं क्या कह रहा हूं, समझो मेरा मतलब नहीं है। हाय हाय कौन कर रहे, तुम बताओ तुम्हारे बच्चे पैदा हुए हुए हैं, जिस बच्चे की सेहत अच्छी है अब देखो हमेशा हंसता रहेगा, उनका मुंह में हंसता रहता है, और जो कमजोर है चाहे 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 मामी दीदी बापी दीदी, इस बात से सबसे पहले अपनी फिजिकल को ठीक करो और मेंटल, मेंटल में क्या है इंसान कमजोर, इसको सहारा दो, विश्वास दो, श्रद्धा दो, आशावादी बनो, हमेशा यकीन रखो कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, मालिक जो करता है अच्छा करता है, ये जो तुम्हारा फेट है, मैं नहीं कहता तुम उसको फेट रखो, जहां तुम्हारा विश्वास बैठा वहां फेट रखो, राम पर रखो, तुझे पर रखो, एक बार रखो, वो मेरा है मैं उसका, तुम देखो गुरु नानक साहब की हिस्ट्री करो, उनको विश्वास था उस मालिक पर, जब सुल्तानपुर तोड़ने लगे सौदा, एक दो तेरा पर आए तो ख्याल आ गया मैं तेरा, सौदा देते गए मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, कहते गए नहीं कहते गए, उनका विश्वास है तो मैं उसका हूं, मोदी खाने वालों ने शिकायत की कि लुटारे खा गया सारा चाहत का कसा हुआ, कोई गलती नहीं निकली, तो उनकी उस गलती को किसने छिपाया, मैं तेरा, तुम भी विश्वास रखो वो मालिक तुम्हारा है और तुम उसके, मालिक तुम्हारा है तुम उसके हो, जो करिए तो भया, अगर ये विश्वास बैठ जाए तुम्हारी अमल का सब खत्म होगी, मैंने गुनान साहब के हाथों में डाल देंगी, मीरा बाई को विश्वास था ठाकरों का प्रसाद अमृत होता है, जा दिया गया उसको बताया भी गया, क्योंकि उसका विश्वास है, विश्वास रखो मालिक जो कुछ तुम्हारे लिए सदगुरु करेगा अच्छा करेगा, अगर ये विश्वास तुम्हारा बैठ जाए दो आपका समझो रामचंद्र, अब तुम कहोगे ईश्वर का अब किस पर विश्वास करें, ये एक सवाल पैदा होता है, अब जमाना बदल गया, अगर इंसान की इतनी तेज हो गई है तो सवाल जवाब करती, किस पर तुमने विश्वास करना है इसका जवाब संत मत देता है, संत मत है किन के लिए, सिर्फ ऐसे दिमाग वालों के लिए जो वाई एंड हाउ का सवाल करते हैं, उनके लिए है ये संत मत, आम दुनिया के लिए संत मत नहीं, आम दुनिया के लिए तुम्हारा अपना विश्वास मत भी रखो, जिनके दिमाग में यह ख्याल पैदा हो जाता है नहीं समझ में आती है कि हम किसको पूछे, ईश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जिनके दिमाग में ये सवाल पैदा हो जाता है उनके लिए ये संत मत है, पहले ये यकीन करो कि परमात्मा या गुरु बाहर नहीं, ये तुम्हारे अंतर रहता है, बस एक बात मैं बता दे, जो गुरु को यह समझते हैं होशियार को रहता है मदद उनकी भी होगी मगर वक्त रहेगा, एक लाल सिंह लाल सिंह हमारा पहले सहदेव जी था, वो कहीं गया वहां जो गया तो किसी ने उसको कह दिया कि यहां मत सो यहां रात को भूत आता है, उन्हें कहा मैं रह रहा हूं मुझे कुछ नहीं होता, वो रात को सो गया, रात को 12 बजे वो कहता है बड़ा कभी काले रंग जो एक आ गया मुझे चाहता था, मैं आपको याद करता रहा 15-20 मिनट गुजरे गए, तो वो मुझे चार पाई को उसने उठा दिया, ये किया वो किया, तो फिर आप आए, वो कहता है तो मैंने कहता आप आए मैंने उसको भूत को बाहर निकाल दिया, तो वो कहता है लाल सिंह कहता है मैंने आपसे पूछा कि आप क्यों आए, देर क्यों नहीं, उनका बेवकूफ से मुझे होशियारपुर समझता था, होशियारपुर से आने से मुझे फर्क तो लगता है, इसलिए हमेशा यकीन करो सतगुरु मालक हर वक्त तुम्हारे अंग संग, ये गुरु नानक साहब कहता है नानक सदा रहे हर नाले, नालंद सदा रहे, मैं तो गया नहीं। तो फिर मैं क्या कहना चाहता हूं तुमको, विश्वास रखो, गुरु न जमता है न मरता है, वो अजर अमर और अविनाशी है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि वो तुमको सत्संग करा के समझा दे कि गुरु तेरे अंदर है। मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे ये समझ नहीं आती थी कि गुरु मेरे अंदर है। मैं समझता था लाहौर में है या राधा स्वामी धाम में है, उन्हीं का करते थे। एक समझ पर सुना दो गुरु तो तेरे पास उन्हीं का करते, मगर मेरी समझ नहीं आती। ये जो काम मुझको दिया उन्होंने, ये समझाने के लिए दिया है, बेवकूफ की जन, तू जिस गुरु की तलाश करता फिरता वो तो हर वक्त तेरे पास है। तुम लोगों की चरणों की मिट्टी से परखने से मुझे ये यकीन हो गया कि गुरु मेरे पास है। जैसे मेरा रूप तुम लोगों के अंदर वर्णन करता मैं नहीं होता, तो यकीन हो गया ना कि गुरु जो है ये हर शब्द के अंतर है। नहीं समझ में आती है? आई वॉन्ट टू लिबरेट यू पीपल। मैं तुम्हारी आंखों में मिट्टियां डालकर अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहता, तुमको यकीन कराता हूं कि वो गुरु सदगुरु तुम्हारे पास है। जिस तरह से मुझे यकीन आया मैं वो बात आपको बताता हूं। यकीन मुझे आना चाहिए नहीं आए, जब मैं नहीं जाता तो मालूम आया कि गुरु तुम्हारे अंदर रहता। बस बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि तुमको घर में घर दिख राय दे तो सतगुरु पुरुष खुदा, जो तुमको तुम्हारे अंतर में असलियत बता दे उसका नाम बाहर के काबल गुरु है। नहीं समझ में आती है? अच्छा, अगर मैं ये समझू कि प्रकाश गुरु है तो उनको मेरे पास हमेशा रहना चाहिए। तो गुरु कौन हुआ राम, मेरी बात को कौन समझेगा? मेरा जो अपना आप है, जो असल में वकील कल है, जो असल में तत्व है, वो मेरा आत्मा है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा। मगर ये इतनी ऊंची बात है, तुम गृहस्थी जहां तक नहीं पहुंच सकते, तुम दुनिया के पीछे पड़े हुए, दुनिया की आशाएं मांगते, तुमको दुनिया चाहिए। ये दुनिया तो चार रोजा है, कब तक रहेगी? तो मुझे तो ये यकीन तुम लोगों से, इसलिए क्योंकि मुझको इस बात का यकीन आप लोगों से हुआ, इस बार से इस उम्र में मैं आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु समझते नमस्कार करता हूं। इतनी बात है, मगर ये मुश्किल बड़ी, जिनको दुनिया कहते हैं छोड़ो छोड़ जग की आस, जब क्या है वो जगत मेरे मन के ख्यालात हैं, मेरी मन की वासनाएं हैं, मेरी मन की आशाएं हैं, मेरी मन के विचार हैं, वो जगत है। ये जगत को कौन छोड़ेगा? ये तो बना हुआ, ये तो भगवान का जगत है। मेरा जगत तुम्हारा जगत तुम्हारे अपने मन के हैं। तो जब इंसान उस मंदिर पर जाता है उस मन से परे जाता है, यही संत मत की ऊंची कहानी। आप समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़ो। रामचंद्र आंखों, ये जितने मन के चक्कर हैं ये सब इसी चक्कर में हम आए हुए हैं। ये संत मत की तारीफ है। मैंने जो आज इस वक्त तक बोला वो संत मत की तारीफ नहीं बोली। माए तुम गृहस्थी हो, तुमको गृहस्थ कर दुख सारों को संत मत की। मेरे पास जितने आदमी माफ कर रहा, ये लड़की की शादी है, ये बेटा है, ये भाई है, मकान है, कारोबार, दुनिया भी चक्कर में फंसी है, उनके चक्र को ठीक करने के लिए मैंने जो कुछ पहले कहा वो ये है कि अपने संकल्प को ठीक रखो। देखो तुम दुनियादार हो, मैं भी दुनियादार हूं, पहले बड़ा मेरा भी गुजारा नहीं, और ना डाटा गाड़ के गुजारा था, माफ करना मैं तो बड़ सच्चा आदमी हूँ। ये संसार ही ऐसा है, इसमें अगर तुम जो कुछ भी चाहते हो वो दो, प्रेम चाहते हो प्रेम दो, इज्जत चाहते हो इज्जत दो, धन चाहते हो धन दो, गाली चाहते हो गाली दो, जो कुछ तुम दोगे तुमको वो मिलेगा। मगर देते वक्त हमेशा ये ख्याल रखो, जिससे जिसको दो उसके दिल से तुम्हारे वास्ते शुभ भावना निकले। इन साधुओं को तुम लोग बेनियों का परिवार हो, ये तो अपना हक समझते हैं, इनके अंतर से शुभ भावना तुमको नहीं मिलेगी। माफ करना मेरी बात को, बड़ा साफ आदमी नहीं समझ में आती है, वो तो अपना हक समझते हैं तुम लोगों से देने का, शुभ भावना वो कहां से देंगे कि ये गरीब दुखी की मदद किया करो, गृहस्थी की मदद किया करो। ये मैंने आजमाई पर, मेरे पास एक वैद्य राज आया, जंद गांव में काम करता था, मेरे कहा बाबा जी 12 साल हो गया मेरी औलाद नहीं है, 12 साल हो गए मेरे औलाद नहीं है। मैंने कहा क्या काम करते हो, जाते कहाँ करते गांव में, मैं कहा एक काम किया करते हैं, क्या मैं क्या अस्पताल के वक्त के बाद अगर कोई तेरे पास दुखी हाल है तो उसके घर जाके उसको इलाज मुफ्त किया करें, लड़का हो जाएगा। 1.5 साल के बाद वो मेरे पास लड़के को लेके आया, मैं तो भूल गया, मैंने उसका नाम भुखी चंद रखा, उसको लड़का किसी ने लिया, मैंने लिया। जो आदमी अस्पताल के वक्त के बाद आएगा वो बेचारा दुखी होगा ना, और फिर वो कहते थे उसका मुख तैयार करता था, उसकी शुभ भावना रहेगा। दुखी गृहस्थियों की मदद किया करो, उनकी शुभ भावनाएं स्वाभाविक निकलेगी। नहीं समझ में आती है, ये लोग 10,000 रुपया दे के आगे सराय बनवा दोगे, उसका इतना फायदा नहीं है जितना किसी दुखी की मदद करना, उसके दिल से खुद बहुत शुभ भावनाएं निकलेंगी। एक शख्स ने पेट में दर्द है, चिल्ला रहा, कोई हमदर्द आया, उसने उसको चूरन भेजे, उसको आराम आ गया। अब वो स्वाभाविक ही उसके दिल से दुआ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मुझे बोलो, रामचंद्र सुनता है आंखें, हम मंदिर में क्या करते, किसी की काम नहीं है, हम उनकी सेवा करते हैं, उनके भाव तो हमें मिल जाता और उनकी दुआएं हमारे काम करती, कितना मैं साफ बयानी करता हूं, मुझे कौन भरवा देगा, जितनी मैं साफ बयानी कर मुझे कौन देगा, मगर फिर भी काम चलता है। इसलिए ऐ माताओ, 300-300 रुपए की पैर में मत पहना करो, 100 की पहन ली, जो 200 बचाती हो गृहस्थी उसमें कितनी कितनी दुखी है। हेल्प दी पुअर, ये है दान जो असली तुम लोगों को करना चाहिए, गरीब गृहस्थियों की मदद करो। तो ये है, इसी बात मैंने इनको कहा, मैं सेंटर बनाया जाता हूं, वहां के सत्संगियों के पैसे को इकट्ठा करके जो वहां के तुम्हारे अपने ही सुखी आदमी है उनकी मदद किया करो। कोई दुखी लड़का है उसको पढ़ा दिया, वो लायक हो जाएगा, काम बन जाए, ये है जीने का राज जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आज के सत्संग में इतने सब ले जाओ कि आप लोगों ने जीना कैसे, खुश रहो, दान रोज दिया करो। देखो मैं तुमको कुंजी बता, गुरु कुंजी देता हूं तुमको, दान देने वाला आदमी उदासित हो जाता है, उसका मन वृद्धि हो जाता है, उसके मन के हालात अच्छे हो जाते। तुम्हारे पास साल के बाद तुमने 20,000 दान दे दिया, 20,000, उसका इतना फायदा नहीं जितना हर रोज तुम 5 रुपए निकालो, 1 पैसा निकालो, मुट्ठी आटा निकालो। वो रोज रोज की जो तुम्हारी प्रैक्टिस है देने की, वो तुम्हारे मन को उदार बना देगी, समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या कहा? आप शेर साहबान है, बजाय एक नियत कर लो, दो रुपए रोज निकालनी है, एक दो रुपए रोज निकालना है। अब मेरे भाव को आपने समझा ना, मतलब मेरा सुबह उठे रोज भजन किया करो, रोज आठ घंटा करो, पंद्रह मिनट करो, बीस मिनट करो, जो रोज रोज का तुम्हारा साधन है, जितना रोज रोज में तुम बस भेजी करोगे तीन दिन पेट में गर्भ धारा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? रोज रोज बधाई से अच्छा, रोज रोज तुम व्यायाम करते हो तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी।